समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
आकाशवाणी गोल्ड पर एक नई सुबह का आगाज हो चुका है और हर सुबह लेकर आती है एक नई उम्मीद, नई आशा और नया बदलाव। और बात जब बदलाव की आती है तो हम याद करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, जिनका विचार था खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, यानी बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जी हाँ, अगर वो बदलाव आप खुद में कर सकते हैं तो यकीनन आप दुनिया को बदल सकते हैं, अपने चारों ओर सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसी विचार के साथ शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आज सवेरे की, जो ताजा तरीन खबरों के साथ देता है आपको वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। और आज सवेरे के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट रेनू कटारिया। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार, और रेनू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड वी ब्रिंग यू आवर डियर लिसनर्स आवर एवर एक्साइटिंग डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। जैसे कि सिद्धार्थ आपको बता ही चुके हैं कि इसमें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज होंगी, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 11th ऑफ नवम्बर। सो लेट अस बिगिन विद द प्रोग्राम सिद्धार्थ।
जी हाँ, नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर।
जी,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडताल में श्री स्वामीनारायण मंदिर के द्विशताब्दी समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लेंगे। वे इस अवसर पर वहां उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। वड़ताल स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर कई दशकों से लोगों के सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन की आस्था का केंद्र बना हुआ है।
In Jharkhand, campaigning for the first phase of the assembly elections will end this evening. Polling in this phase will be held on Wednesday in 43 constituencies. Star campaigners of both the NDA and the INDIA bloc are making last-ditch efforts to woo the voters in favour of their party candidates. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to address BJP party workers of Jharkhand this afternoon in Mera Booth Sabse Majboot programme through video conferencing. Senior BJP leader Amit Shah will hold rally in support of former Chief Minister Champai Soren at football ground in Adityapur under Saraikela constituency. Congress President Mallikarjun Kharge will hold two election rallies at Panki and Chhatarpur assembly constituencies. Senior JMM leader and Chief Minister Hemant Soren will address election meetings at four places of Husainabad, Saraikela, Ichagarh and Sili assembly constituencies.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे, जो रविवार को सेवानिवृत्त हो गए।
Today is also the last day of the campaigning for the assembly by-polls in Assam and West Bengal. In Assam, a total of 34 candidates are in the fray in the five assembly seats that are going to by-polls on Wednesday. Several senior leaders of the NDA, Congress and BPF will try to woo the voters today in the poll-bound areas. Over 10 lakh voters could exercise their voting rights in these five seats. In West Bengal, by-election will be held in six assembly constituencies of Sitai, Madarihat, Nehati, Haroa, Mednipur and Taldangra. The Election Commission is taking comprehensive measures to ensure a free and fair election across these constituencies. There are over 15 lakh eligible voters in these six seats.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आज से विदेश मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में 6 दिन का भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करेगा। ये कार्यक्रम 16 नवंबर तक चलेगा। कार्यक्रम में मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड समेत 8 देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य लोग भाग लेंगे। आयोग ने कहा है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में मानवाधिकारों को प्रोत्साहन, संरक्षण और मजबूती देना है।
In West Bengal, the trial in the ghastly rape and murder of a junior woman doctor at Kolkata-based RG Kaur Medical College and Hospital will start at a special court from today. The trial will be conducted on a fast track and daily basis. It will start 94 days after the body of the junior doctor was discovered within the RG Kaur premises on the morning of August 9. The Central Bureau of Investigation had filed its first charge sheet in the matter 35 days before the beginning of the trial process. In the first charge sheet, Sanjay Roy was identified as the sole prime accused in the rape and murder crime.
और इन जिस तरह से राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है और स्वास्थ्य के भी कई उसमें दुष्परिणाम हो रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने आज रात 9:30 बजे अपने लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में एक परिचर्चा प्रसारित करेगा जिसका विषय है वायु प्रदूषण और उसका प्रभाव
जी।
इस परिचर्चा में सफदरजंग अस्पताल के रेस्पिरेटरी विभाग में प्रोफेसर नीरज गुप्ता और वरिष्ठ पर्यावरणविद मुकुल सनवाल हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में श्रोता वायु प्रदूषण उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के संबंध में हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 011 यानी दिल्ली का कोड 01123421050 और दूसरा नंबर है 2331444। इसके पहले दिल्ली का कोड 011 लगाना ना भूलें। इसके अलावा आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से 9289094044 पर भी भेज सकते हैं या #askirkis पर अपने प्रश्न पोस्ट भी कर सकते हैं।
The 29th annual UN Climate Change Conference COP29 will kick off at Baku in Azerbaijan today. Dubbed as Finance COP, the two-week-long event will focus heavily on securing a new climate finance target for countries most vulnerable to climate impacts. It will bring together negotiators from nearly 200 countries, including India, to advance the Paris Agreement's goals of limiting global temperature rise, strengthening climate resilience, and mobilizing support for developing nations. With solutions on the table, but investments still lagging, especially in developing countries, a strong financial outcome at COP29 could unlock a new era of action. The single biggest measure of success for this conference will be whether negotiators can agree on an ambitious new climate finance goal which truly meets developing countries' needs. For India and the Global South, access to finance, technology and energy resources remains critical to meeting climate targets and protecting communities on the front lines of climate change.
और अब बात करते हैं कुछ खेल खबरों की। महिलाओं की एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 प्रतियोगिता आज से बिहार के राजगीर में शुरू हो रही है। 10 दिन की इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इस प्रतियोगिता में भारत के अलावा चीन, जापान, मलेशिया, कोरिया और थाईलैंड जैसी एशिया की प्रमुख हॉकी टीमें भाग ले रही है। ट्रॉफी का पहला मैच आज दोपहर 12:15 बजे जापान और कोरिया के बीच खेला जाएगा। श्रोताओं, मुख्य समाचारों के बाद कार्यक्रम आज सवेरे में आप समय है मेट्रो न्यूज का और सबसे पहले चेन्नई की खबरों के साथ है रेनू। और चेन्नई के बाद पहले चलते हैं बेंगलुरु।
हाँ जी बिल्कुल, लेट्स गो टू बेंगलुरु। सिद्धार्थ, इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर एंड ध्यानचंद अवार्डी तृप्ति मुरगुंडे इनॉग्रेटेड द 38th ऑल इंडिया पोस्टल बैडमिंटन टूर्नामेंट इन मैसूरू। देयर आर 194 प्लेयर्स कम्पीटिंग फ्रॉम 20 पोस्टल सर्कल्स इंक्लूडिंग 11 प्लेयर्स फ्रॉम कर्नाटका। इन हर इनॉग्रल एड्रेस तृप्ति अर्ज्ड अपॉन पेरेंट्स टू एनकरेज देयर वार्ड्स टू एंगेज इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स विद within four walls. She called upon the sporting fraternity to prepare well for the 2036 Olympics and bring laurels to India by winning medals. She hoped that India would emerge as a major sporting nation in the days to come. The All India Postal Tournament will conclude on November 14 and the valedictory event will be graced by Olympian and Dhyanchand awardee Ashwini Akunji Chidananda and the member of Postal Service Board Ashish Kumar. और अब सिद्धार्थ आप बताइए कि दिल्ली से आपके पास क्या खबर है।
जी हाँ रेनू, नजर डालते हैं राजधानी दिल्ली की खबरों पर और बात करते हैं, जैसा कि अब हमने मुख्य समाचारों में बढ़ते प्रदूषण की बात की तो आपको बता दें कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में वायु गुणवत्ता यानी AQI बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में रात 8 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 336 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि अगले 2 से तीन दिन के दौरान दिल्ली एनसीआर में रात और सुबह के समय धुंध और हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है, और इनो स्टूडियो आते समय भी हमें सुबह हल्का कोहरा बिल्कुल देखा है। और श्रोताओं, आपको बता दें कि 0 से 50 के बीच EQI अच्छा माना जाता है, 51 से 100 के बीच इसे संतोषजनक बोलते हैं, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच में खराब, और 301 से 400 के बीच बेहद खराब माना जाता है, 400 से 450 के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर माना जाता है। इसलिए हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये जानकारी देते हैं कि आप अगर ऐसे में आपके जो स्वास्थ्य है उस पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ते हैं, इसलिए आपको अगर आप सांस के रोग से पीड़ित हैं या एस्थेमेटिक हैं तो आपको मास्क का प्रयोग जरूर करना चाहिए।
बिल्कुल।
बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कल 2 नए मार्गों 892 शटल एसटीएल और 892 स्पेशल पर नई बस सेवाओं का शुभारंभ किया। इन बसों का संचालन दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रांजिट सिस्टम द्वारा किया जाएगा। और अगली खबर उन लोगों के लिए जो छठ की छुट्टियों के बाद दिल्ली वापस लौट रहे हैं। दिल्ली मेट्रो त्योहारों के बाद दिल्ली लौट रहे यात्रियों की सुविधा के लिए 11 नवंबर तक सुबह के समय यानी आज अतिरिक्त मेट्रो रेलों का परिचालन कर रही है। DMRC ने बताया कि आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पर सुबह पहली ट्रेन 6 बजे के बजाय 5:30 बजे से उपलब्ध है। वहीं नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो रेल सेवाओं का परिचालन सुबह 5:45 बजे के बजाय 5:15 बजे से किया जा रहा है।
जी, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू हैदराबाद। The Telangana Cyber Security Bureau, TGCSB, has arrested 165 persons during the past 6 months for allegedly involved in 795 cybercrime cases in the state and over 3,000 cases across the country. TGCSB Director Shikhar Goyal informed that the teams have been working out clues in identifying, tracking and locating the cyber criminals involved. She said 165 criminals involved in different cases in Telangana and other states were nabbed so far, and the information about the suspects apprehended by the TGSCB was also shared with the police stations concerned cornered across the country. The director further said the police found the fraudsters were involved in various cyber crimes like part-time jobs, business investment frauds, digital arrest, loan frauds, cyber slavery, hacking, advertisement frauds, impersonation, matrimonial frauds and sextortion, among others. और आपके पास चलते हैं मुंबई कोलकाता की खबरों के लिए।
जी हाँ, सबसे पहले नजर डालते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की खबरों पर।
जी,
मुंबई में आगामी चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। चुनाव आचार संहिता के पालन के लिए सतर्क। राज्य आबकारी विभाग ने भिवंडी क्रीक इलाके से 10 लाख रूपये से अधिक की देशी शराब जब्त की है। आबकारी विभाग के अधिकारियों को भिवंडी में शराब निर्माण का पता चला, जिसके बाद विभाग ने पुलिस अधिकारियों की टीम के साथ 8-8 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI मुंबई ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक सफल अभियान में 3,350 ग्राम सोना जब्त किया है। जांच में पता चला कि ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ के सदस्य ने एक फ्लाइट के कचरे के डिब्बे से सोना बरामद किया था और उसने इसे अपने एरोड्रोम प्रवेश परमिट का उपयोग कर तस्करी करने के लिए कार्यकारी को सौंप दिया था। और अब नजर डालते हैं देश की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता की खबर पर। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की जूनियर महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मुकदमे पर आज से विशेष न्यायालय में सुनवाई शुरू होगी। ये सुनवाई फास्ट ट्रैक आधार पर होगी। इस अस्पताल परिसर में 9 अगस्त की सुबह जूनियर डॉक्टर का शव मिलने के 94 दिन बाद ये सुनवाई शुरू होने जा रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने मुकदमे की प्रक्रिया शुरू होने से 35 दिन पहले इस मामले में अपना पहला आरोप पत्र दायर किया था। इसमें संजय राय को दुष्कर्म हत्या के अपराध में एकमात्र आरोपी बताया गया है। तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार। और श्रोताओं, अब हम जान लेते हैं आज महानगरों में मौसम कैसा रहने वाला है। और रेनु, सबसे पहले नजर डालते हैं राजधानी दिल्ली के मौसम पर। तो राष्ट्रीय राजधानी में आज सुबह हल्का कोहरा छाया रहा और आज का जो अधिकतम तापमान है वो 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। और रेनु, अगर हम देखें तो दीपावली के बाद से मौसम में अचानक से जो आया बदलाव है, इस बदलाव की वजह से समय अगर देखें तो ज्यादातर लोगों का, किसी का गला खराब है, किसी को जुकाम हुआ है, तो बड़ी सारी चीजें, तो ऐसे बदलते मौसम में
अपना ख्याल रखना
और खास तौर से सुबह के समय जो आवाज होती है उसकी तो बिल्कुल आप कहीं सकती हैं। और अगर हम रुख करते हैं मुंबई का, तो वहां पे आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आसमान साफ रहने की संभावना है। कोलकाता की बात करें तो वहां आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और आंशिक रूप से आज कोलकाता में बादल छाए रह सकते हैं। और रेनू, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद का मौसम कैसा रहने वाला है
वो मैं आपको बताती हूँ। चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 24 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 32 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव फॉग और मिस्ट इन द मॉर्निंग एंड पार्टली क्लाउडी स्काई लेटर। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 18 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 27 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद हेज। द टेम्परेचर विल हावर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 19 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस।
तो अगर हम देखें तो जितने भी हमारे मेट्रो सिटीज हैं, ऑलमोस्ट सब जगह एक सा मौसम हो रहा है।
मौसम हो गया जी।
और अब नजर डालते हैं उन घटनाओं पर जो आज के दिन का इतिहास बन गए। सबसे पहले 1811 की बात करेंगे, जब कार्टाहेना कोलंबिया ने स्पेन से खुद को स्वतंत्र घोषित किया था। और 1836 में चिली ने बोलीविया और पेरू के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 1905 की बात करें, द प्रिंस ऑफ वेल्स ने मुंबई में सुप्रसिद्ध द प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय की नींव रखी थी।
1913 ऑन दिस डे गांधी जी वॉज सेंटेंस्ड टू 9 months इम्प्रिजनमेंट एट साउथ अफ्रीका। एंड इन 1918 ऑन द 11th आवर ऑफ द 11th डे ऑफ द 11th मंथ वर्ल्ड वॉर द फर्स्ट केम टू एन एंड।
और 1918 में पोलैंड ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित किया था। 1937 में अमेरिका के क्लिंटन डेविसन और इंग्लैंड के सर जीबी थॉम्पसन को भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
ऑन दिस डे 1958 इनॉग्रेशन ऑफ इंडियन फर्स्ट वन इन इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड फैक्ट्री एट गोमिया। इन 1973 इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल फिलेटेलिक एग्जीबिशन स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली। इन 1991 ऑन दिस डे द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स द anti-defection law as constitutional but holds that decisions of presiding officers under the law could be subjected to judicial review.
1962 में कुवैत की नेशनल असेंबली ने संविधान को स्वीकार किया था। 1966 में अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्षयान जेमिनी 12 लॉन्च किया था। और 1975 में आज के दिन अंगोला को पुर्तगाल से आजादी मिली थी।
एंड इन 1998 ऑन दिस डे दैट इज 11/11 दैट इज 11th ऑफ नवंबर इंडिया ऑब्जेक्ट्स टू वॉशिंगटन्स डिस्क्रिमिनेशन इन ईजिंग सैंक्शंस अगेंस्ट न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद क्लैम्प्ड इन द वेक ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट बाय द टू कंट्रीज।
और रिनु, आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, जो हर साल 11 नवंबर को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध शिक्षाविद और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति में मनाया जाता है। भारत में शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म आज के दिन 1888 में हुआ था
जी। और थोड़ा सा मैं भी बोल दूं उनके बारे में। अबुल कलाम आजाद वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, राइटर एंड अ सीनियर लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फॉलोइंग इंडियाज इंडिपेंडेंस ही बिकेम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन द इंडियन गवर्नमेंट, जैसे कि आपने बताया है सिद्धार्थ। ही इज कॉमनली रिमेम्बर्ड एज मौलाना आजाद। द वर्ड मौलाना इज एन ऑनरिफिक मीनिंग ऑफ मास्टर एंड ही हैड अडॉप्टेड आजाद और फ्री एज हिज पेन नेम। हिज कंट्रीब्यूशन टू एस्टैब्लिशिंग द एजुकेशन फाउंडेशन इन इंडिया इज रिकग्नाइज्ड बाय सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे एज नेशनल एजुकेशन डे अक्रॉस इंडिया। आजाद वॉज वन ऑफ द मेन ऑर्गनाइजर्स ऑफ द धरासाना सत्याग्रह इन 1931 एंड इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल लीडर्स ऑफ द टाइम, प्रोमिनेंटली leading the causes of Hindu Muslim unity as well as espousing secularism and socialism. He served as Congress president from 1940 to 1945, during which the Quit India Rebellion was launched. Azad was imprisoned together with the entire Congress leadership. He also worked for Hindu Muslim unity through the Al Hilal newspaper.
और इन्हों आज ही पुण्यतिथि है कोप्पाली वेंकटप्पा पुट्टप्पा की, जो कन्नड़ भाषा के कवि और लेखक थे। उन्हें 20वीं शताब्दी के महानतम कन्नड़ कवि की उपाधि दी जाती है। कन्नड़ भाषा में ज्ञानपीठ सम्मान पाने वाले कोप्पाली वेंकटप्पा पुट्टप्पा सबसे पहले व्यक्ति थे। पुट्टप्पा ने अपने सभी साहित्यिक कार्य उपनाम कुवेम्पु से किए हैं। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण 1989 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में और 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था।
और यही चीज और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऐड करके मैं इंग्लिश में थोड़ा सा बता देती हूँ। कुप्पाली वेंकटप्पा पुट्टप्पा, पॉपुलरली नोन बाय हिज पेन नेम कुवेम्पु, वाज एन इंडियन पोएट, प्लेराइट, नॉवलिस्ट एंड क्रिटिक। ही इज वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट कन्नडा पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। ही वाज द फर्स्ट कन्नडा राइटर टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड। कुवेम्पु स्टडीड एट मैसूरू यूनिवर्सिटी इन द 1920s एंड टॉट देयर फॉर नियरली 3 decades एंड सर्व्ड एज इट्स वाइस चांसलर from 1956 to 1960. He initiated education in Kannada as the language medium. For his contributions to Kannada literature, the government of Karnataka decorated him with the honorific Rashtrakavi or National Poet in 1964 and Karnataka Ratna, the gem of Karnataka, in 1992. He was conferred the Padma Vibhushan by the government of India in 1988. And he penned the Karnataka state anthem, Jai Bharat Jananiye Tanujate.
जी, और श्रोताओं आज ही पुण्यतिथि है मूक युग के बाद भारतीय सिनेमा के इतिहास में आए थिएटर्स युग के बेहद कल्पनाशील फिल्म निर्देशक देवकी कुमार बोस की। वे ध्वनि और संगीत के अद्भुत जानकार थे। उनकी अधिकतर फिल्मों में रायचंद बोराल ने संगीत दिया था। देवकी बोस ही वो पहले बांग्ला जो निर्देशक थे जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ रवींद्र संगीत को मिलाकर फिल्मों में एक अद्वित ध्वनि माधुर्य पैदा किया। उनकी फिल्मों में चंडीदास, पूरन भगत, मीराबाई, सीता, विद्यापति, सोनार काठी, मेघदूत, सागर, संगम और अपराधी जैसी फिल्में प्रमुख हैं। और आज ही पुण्यतिथि है आधुनिक काल के प्रसिद्ध हिंदी व राजस्थानी लेखक कन्हैयालाल सेठिया की। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य रचना पाथल व पीथल है। आपकी रचनाओं के लिए भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से सम्मानित किया। आपको मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया जा चुका है।
जी बिल्कुल। Moving on to birthdays, today is the birthday of Leonardo Wilhelm DiCaprio, born today in 1974, who is an American actor and film producer. Known for his work in biographical and period films, he is the recipient of numerous accolades, including an Academy Award, a British Academy Film Award, and 3 Golden Globe Awards. As of 2019, his films have grossed over $7.2 billion worldwide, and he has been placed 8 times in annual rankings of the world's highest paid actors. DiCaprio achieved international stardom with the star-crossed romances Romeo and Juliet in 1996 and Titanic in 1997. ये मूवी मैंने कई बार देखी है,
तो हम सबने देखी है।
जी बिल्कुल, तो क्यों ना हम इसी मूवी का टाइटैनिक का थीम सॉन्ग सुन ले, which is sung by Celine Dion.
जी बिल्कुल, आइए सुनते हैं।
या
श्रोताओं आज ही जयंती है कैलाश वाजपेयी की, जो हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। उन्हें साहित्य अकादमी सहित कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। उनकी कविताओं के अनुवाद कई भाषाओं में हुए हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कविताएं प्रस्तुत की थी। मुख्य रचनाओं की बात करें तो संक्रांत, तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का समंदर, सूफीनामा, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष काफी प्रसिद्ध हुई। 2009 में हवा में हस्ताक्षर के लिए कैलाश वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
And today is the birthday of Demi Jean Moore, born in 1962, who was an American actress, a leading actress in the late 1980s and early 1990s. She was the world's highest paid actress by 1995. Moore's accolades include nominations for a Primetime Emmy Award and 3 Golden Globe Awards. She established herself as a star with the top-grossing romance film Ghost in 1990, and she had further box office successes in a few movies, naming A Few Good Men in 1992. पर यहाँ पे हम घोस्ट मूवी से एक बहुत प्यारा सा गाना डेमी मूर पे फिल्माया हुआ सुन लेते हैं. And also we are paying tributes and remembering Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, born today, sometimes translated as Dostoevsky, who was a Russian novelist, short story writer, essayist and journalist. Numerous literary critics regard him as one of the greatest novelists in all of world literature, as many of his works are considered highly influential masterpieces. Dostoevsky's literary works explore the human condition in the troubled political, social and spiritual atmospheres of the 19th century Russia and engage with a variety of philosophical and religious themes. His most acclaimed novels include Crime and Punishment, 1866, The Idiot, 1869, Demons, 1872, The Adolescent, 1879, and The Brothers Karamazov, 1880. His 1864 novella Notes from Underground is considered one of the best and the first works of existentialist literature.
और श्रोताओं, आज ही जन्मदिन है जॉनी वॉकर का, जिन्हें हम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी के नाम से जानते हैं. वो हिंदी फिल्म जगत के एक जाने माने हास्य अभिनेता रहे हैं. उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. इंदौर में जन्मे बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी के पिता एक मिल में काम करते थे. नौकरी जाने के बाद वो परिवार के साथ मुंबई चले आए, जहाँ बदरुद्दीन ने मुंबई बस सेवा में बस कंडक्टर का काम करना शुरू कर दिया था. काजी को दूसरों की नकल उतारने में भी काफी शौक था, जिसे वो अपनी बस यात्राओं में यात्रियों के सामने शौकिया किया करते थे. और यहाँ कहते हैं ना, जब आपके अंदर हुनर होता है रेनू, तो कोई ना कोई आपको आइडेंटिफाई कर ही लेता है. तो वहाँ पर बलराज साहिनी ने उन्हें देखा और गुरुदत्त से मिलवाया. इसके बाद काजी का नया नाम जॉनी वॉकर मिला और वो फिल्मों में आ गए.
अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबरा.
1959 में उन्हें फिल्म मधुमती के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला. और जॉनी वॉकर की जब भी बात होती है, हमारे होठों पर मुस्कान आ जाती है.
मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान. कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिल मिलता है, यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं. दिल इंसान का नहीं, कहीं नामो निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान.
जी हाँ, इस गीत के बोल ऐसे हैं रेनू की, सच में.
और जब भी बॉम्बे जाते हैं तो एक बार ये गाना कहीं ना कहीं घूम ही जाता है अपने दिमाग
बिल्कुल
में.
और श्रोताओं, आज ही जन्मदिन है सुप्रसिद्ध बॉलीवुड अदाकारा माला सिन्हा का.
मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, कभी कभी जो मिला सारी दुनिया मिले, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिले, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया.
जी हाँ, श्रोताओं, माला सिन्हा ने हिंदी फिल्मों में लंबा सफर तय किया और अपनी अलग पहचान बनाई। वे बांग्ला फिल्मों से हिंदी फिल्मों में आई थी, बादशाह से हिंदी फिल्मों में उन्होंने डेब्यू किया था और 100 से भी ज्यादा फिल्में की।
मेरे दिल के गले खिला जो मेरा दिल, सारे बगिया खिले, खिला जो मेरा।
और श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का। आपके एक बेहतर दिन की शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए सिद्धार्थ सिंह और रेणु कटारिया को। लेकिन आप सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड। आज सवेरे कार्यक्रम अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
या बट स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक यू डियर लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।